स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उम्मीद है कि आप भी आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दानियल नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है राज्यों का उत्थान एवं पतन। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और अपने जीवन में आनंदित हैं। आज मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और मैं विशेष रीति से धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने उन श्रोताओं को जो अपने आशीषों को पत्र के माध्यम से और फोन के माध्यम से हम तक पहुँचाते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी श्रोता मित्र भी इस कार्यक्रम को सुनने के द्वारा जो आशीष प्राप्त करते हैं हमें पत्र के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से और फोन के माध्यम से हमें जानकारी देंगे, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। इतना ही नहीं, यदि आपके पास कोई प्रार्थना के विषय हैं तो आप उसे भी भेज सकते हैं। तो मेरे मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हम सब इन दिनों दानियल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि दानियल ने राजा नबूकदनेस्सर के सपनों के अर्थ को बताया। और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर दानियल के द्वारा से अपनी महिमा लेता है। मेरे प्रियो, आइए इससे पहले कि हम अध्ययन में और आगे बढ़ें, हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए और हम इससे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के जीवन के लिए कि आपने हमें फिर से एक बार ऐसा अवसर दिया है कि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सुनना और सीखना चाहते हैं, आपके वचन पर मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हम में से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जो कुछ भी आज हम सुनते और सीखते हैं हम समझ सके, ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चलने पाएं। हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों पर अपने अनुग्रह प्रदान करें, हर एक प्रकार की बुराइयों से, बुरे संगति से, व्यर्थ की बातों से, हर एक प्रकार की चिंताओं से आप उन्हें बचा करके रखें। हम प्रार्थना करते हैं आप उन्हें सामर्थ्य दीजिए, धैर्य दीजिए, ताकि वे इस संसार में रहकर आप में विजयी जीवन जी सकें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन भाई बहनों के लिए जो बीमार और निराश हैं, प्रभु जी आप उन्हें स्पर्श कीजिए, उन्हें शांति दीजिए, उन्हें चंगाई और छुटकारा दीजिए, ताकि वे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रीति से बलवंत किए जाएं। आप उनसे बातचीत करेंगे इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज के वचन पर आशीष देने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आप मेरे साथ दानियल नबी की पुस्तक को निकाल लीजिए और आप मेरे साथ 3:4-6 को पढ़ें, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, इस पर्व में वे आराधना की स्वतंत्रता के बारे में कुछ नहीं जानते थे। संगीत सुनते ही उन्हें उस मूर्ति को मुंह के बल गिरकर दंडवत करना था। यहां मन से उठने वाले श्रद्धा भाव की गुंजाइश नहीं थी। संपूर्ण विधि का पहले से ही प्रबंध किया गया था और आपको सिर्फ उसका अनुसरण करना था। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम इस संगीत में विभिन्न वाद्य यंत्र को देखते हैं। नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द, अर्थात इन बाजों या वाद्यों की अपेक्षा अन्य वाद्य भी थे जिनका नाम इस सूची में नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि वह समागम समर्पण सभा से भिन्न था। जनसमूह को विवश किया जा रहा था, जबकि सच्ची आराधना मन की अभिव्यक्ति है, बल प्रयोग का कार्य नहीं है। अतः उचित होगा कि हम कहें वे बाहरी दिखावा कर रहे थे। संगीत दैहिक आकर्षण हेतु था, जबकि आत्मिक संगीत आराधना में अद्भुत सहयोग प्रदान करता है। आज की कुछ कलीसियाओं में आत्मिक संगीत और सांसारिक संगीत में अंतर करना बहुत ही कठिन होता है। आराधना में संगीत के विषय पौलुस ने पर्याप्त चर्चाएं की हैं। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। तब हम पढ़ते हैं कुलुसियों के पत्री 3 अध्याय उसके 16 पद में वह कहता है, अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि आरंभ में संगीत मार्ग से हट गया, अर्थात भ्रष्ट हो गया था। उत्पत्ति 4 अध्याय उसके 21 पद में हम देखते हैं कि उसके भाई का नाम दुबाल था। वह वीणा और बांसुली आदि बाजों के बजाने की रीति का प्रवर्तक हुआ, परंतु यह कैन का वंशज था। जब संगीत और अनुष्ठान देह को उत्साहित करे तब वह मनुष्य को उठाने के स्थान पर गिराता है और यह सच्ची आराधना में सहायक नहीं होता है। उससे आराधना की आत्मा मर जाती है, तथापि संगीत आराधना को बल भी प्रदान करता है। वह आत्मिक सेवा में सहायक होकर महान आशीष का कारण होता है। मेरे मित्रों, मुझे एक सभा का स्मरण आता है जहां मुझे प्रवचन सुनाने के लिए बुलाया गया था। इससे पहले कि मेरा प्रवचन का समय आता, एक महिला गीत गाने के लिए खड़ी हुई। उसने आराधना से प्रासंगिक गीत गाने की अपेक्षा वह गीत गाया जिससे वह अपने गायन का प्रदर्शन कर सकती थी। उसके गीत गाने से सभा की आत्मिकता मर गई थी। आत्मिकता को जगाने के लिए मैंने एक समूह गान का अनुरोध किया और फिर प्रवचन सुनाया। सभा के पश्चात मैंने उस कलीसिया के सेवक से जानना चाहा कि वह कौन थी। तब उन्होंने बताया कि वह कलीसिया के एक दिग्गज पदाधिकारी की पुत्री थी और विशेष सभाओं में आरंभिक गीत गाकर सभा आरंभ करवाती है। मेरे मित्रों, संगीत आराधना की सहायता करता है, परंतु हानि भी पहुंचा सकता है। सांसारिक संगीत का विश्वासियों पर अत्यधिक प्रभाव है और उनके द्वारा वह सभाओं में भी प्रवेश कर चुका है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि अनेक पादरीगण परमेश्वर के दास इसका विरोध कर रहे हैं। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर ने उस मूर्ति को दंडवत न करने वाले के लिए एक भयानक दंड की घोषणा की थी। सांसारिक संगीत ने समर्पण सभा का उद्घाटन किया और तीन इब्रानी युवकों को छोड़ सब हर एक उपस्थित जन जो वहां पर थे उस मूर्ति को दंडवत करने लगे। हम दानियल के पुस्तक 3 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, इस कारण उस समय ज्यों ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबुकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। मेरे मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह सभा मात्र बाहरी दिखावा था और सर्वसम्मति से नहीं थी। कुछ के मन में श्रद्धा थी और कुछ के मन में श्रद्धा की अपेक्षा बस भय था, परंतु उन्होंने अपनी असहमति प्रकट नहीं होने दी। वे निश्चय ही अपने मन अर्थात मन के अंदर में तर्क करके कहते होंगे कि यह ठीक नहीं है या इसे उचित भी ठहरा रहे थे। हम भी आज संसार के साथ समझौता करके उसे युक्ति युक्त ठहराते हैं। एक विश्वासी ने अरूढ़िवादी कलीसिया का सदस्य होने का तर्क मेरे सामने रखा कि उसका पिता उस कलीसिया का कर्मठ सदस्य था और उसकी मृत्यु के बाद उस कलीसिया ने उसके नाम का एक कांच खिड़की में लगवाया, इसलिए वह वहां का सदस्य है। मेरे मित्रों, उस कलीसिया का सदस्य होने की अपेक्षा उचित होता कि वह उस खिड़की को निकालकर घर ले जाता और वहां दूसरी खिड़की लगवा देता। हम देख रहे हैं नबुकदनेस्सर ने एक विशाल सोने की मूर्ति बनवाया और उसकी स्थापना के लिए सब उच्च अधिकारियों को भी बुलवाया। यह उसका अहंकार था और वह संभवतः सब धर्म के लोगों को एक करके राष्ट्रीय एकता को उत्पन्न करना चाहता था। अब प्रजा मन से चाहे या ना चाहे, राजा का आदेश तो सबको मानना ही होगा। देखिए कि वहां क्या हुआ। आप सोचेंगे कि सबने राजा की आज्ञा मानी होगी, क्योंकि नहीं मानते तो नबुकदनेस्सर एक पागल राजा था, वह कैसा भी दंड दे सकता था। तो हम देखते हैं कि 3 इब्रानी युवक मूर्ति को दंडवत नहीं करते हैं। आइए हम पढ़ें दानियल 3 अध्याय के 8 पद में, उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। राजा ने सभा में आज्ञा तोड़ने वालों पर ध्यान रखने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति किए थे। कई एक कसदी पुरुष, इससे ऐसा संकेत मिलता है कि कुछ लोग विशेष करके इब्रानियों पर ध्यान रखने के लिए रखे हुए थे। या तो वे इनसे ईर्ष्या करते थे या उनके बैरी थे। इस सभा में केवल ये 3 यहूदी थे क्योंकि वे नबुकदनेस्सर के पदाधिकारी थे, अन्य यहूदी बंधुआई में थे। अतः वे राजा के पदाधिकारी ना होने के कारण वहां बुलाए नहीं गए थे। हम आगे पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक 3 अध्याय उसके 9 से 12 पद में, वे नबुकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीवी रहे, हे राजा तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंघे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वह धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की, वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते, और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। मेरे मित्रों, ऐसा प्रतीत होता है कि वह आर्केस्ट्रा वहां का प्रसिद्ध आर्केस्ट्रा रहा होगा, क्योंकि यहां तीसरी बार हमें संगीत वादों के नाम दिए गए हैं। उन कसदियों की शिकायत औपचारिक थी और आज्ञा के अनुसार थी। उन्होंने इन तीनों इब्रानी युवकों का नाम लेकर सीधी शिकायत की थी। उनकी शिकायत में कोई भी भ्रम नहीं था। उनका दोष था कि इन मनुष्यों ने राजा का आदर नहीं किया, जो सच नहीं था। मूर्ति की पूजा न करना उनके द्वारा राजा का अपमान करना नहीं था। वे तो केवल मूर्ति से बड़े परमेश्वर का आदर कर रहे थे। जब वे राजा को उत्तर देंगे तो इस तथ्य का प्रकाशन भी होगा। मेरे प्रियो, ये तीन इब्रानी युवक परमेश्वर के सामर्थ की घोषणा करते हैं। हम दानियल नबी की पुस्तक 3:13 में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। लिखा है, तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर, इससे राजा के साथ मानसिक असंतुलन की समस्या थी। उसके ऐसे निर्णय मानसिक असंतुलन को प्रकट करते हैं। वहां क्रोधावेग और मानसिक असंतुलन का रोगी उपस्थित था, अर्थात पल भर में वह अत्यधिक क्रोधित हो जाता था तो दूसरे ही पल वह दिल खोलकर हंसने लगता था। यह ऐसा ही व्यक्ति था। दानियल 3:14 में लिखा हुआ है, नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई भी सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? अब यहां पर सुनिए कि क्या हो रहा है। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा कि क्या उन पर लगाया गया यह दोष सही है? क्या उन्होंने उसके देवता और उसके द्वारा स्थापित इस मूर्ति को दंडवत करने से इनकार कर दिया था? यह राजा का प्रश्न है। दानियल 3:15 में लिखा हुआ है, यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे बांसुली, वीणा सारंगी, सितार शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? मेरे मित्रों, राजा ने उन्हें एक और अवसर दे दिया कि वे उस मूर्ति को दंडवत करें। यदि वे अब मूर्ति को दंडवत करते हैं तो वह आरंभ से भी बुरा होगा। राजा ने अवज्ञा का दंड फिर से सुनाया। राजा ने उनके परमेश्वर के बारे में सुना था और वह उन्हें विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर भी उन्हें उनके दंड से नहीं बचा सकता। तब हम आगे पढ़ते हैं दानियल 3:16 में, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। मेरे मित्रों, देखिए, वे राजा को नाम से संबोधित करते हैं, परंतु वे यह नहीं कहते, हे राजा चिरंजीव रह, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं जान पड़ता। इसका अर्थ है कि उन्होंने राजा की अवज्ञा के परिणाम को भली भांति जान लिया था। उन्होंने उसका मूल्य जानकर भी राजा से कहा कि उन्हें राजा को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि राजा को उत्तर देने में वे अपनी भलाई के प्रति चिंतित नहीं थे। बेबीलोन के ज्योतिषियों ने उन्हें परामर्श दिया होगा कि वे मूर्ति को दंडवत करें तो उनका भला होगा, अर्थात वे बच जाएंगे। परंतु परमेश्वर ने कहा है, तू मेरे सामने किसी को भी ईश्वर करके ना मानना, तू किसी भी मूरत को खोदकर मत बनाना और आकाश, पृथ्वी के जल के किसी वस्तु या प्राणी की सूरत बनाना। तू ना तो उनको दंडवत करेगा और न ही उनकी आराधना करेगा। क्या मैं तेरा प्रभु परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ? और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो कोई मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसके 3-6 पद में पढ़ते हैं। ये इब्रानी युवक परमेश्वर के प्रति सच्चे थे और परमेश्वर के लिए खड़े होने में उन्हें असीमित साहस की आवश्यकता थी, जिसे उन्होंने दिखाया। दानियल के पुस्तक 3 अध्याय उसके 17-18 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो जाए कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। परिणाम की चिंता न करते हुए इन 3 युवकों ने नबूकदनेस्सर की मूर्ति की अपेक्षा परमेश्वर की उपासना करने का निश्चय किया। आग के भट्ठे में इन 3 इब्रानी युवकों की रक्षा को हम देखते हैं दानियल के पुस्तक 3 अध्याय उसके 19-20 पद में। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेसक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्ठे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। नबूकदनेस्सर झुंझला उठा, अर्थात क्रोध के कारण आपे से बाहर हो गया। उसका क्रोध असाध्य था। क्रोध में आकर उसने इन 3 युवकों को, जिन्हें वह पूर्व में अनुग्रह प्रदान किया करता था, आग के भट्ठे को 7 गुना धधका कर उसमें डाल देने की आज्ञा दी। इसकी आवश्यकता नहीं थी, परंतु इससे उसके मनोभाव की प्रगटीकरण होती है। दानियल की पुस्तक 3 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांध कर उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए गए, अर्थात वे आग में डाले जाते समय पूरी तरह वस्त्र पहने हुए थे। आगे लिखा है दानियल 3 अध्याय के 22-23 पद में, वह भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे, और उसी धधकते हुए भट्ठे के बीच ये 3 पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। मेरे मित्रों, इन बंदियों को आग में डालने वाले आग की गर्मी से झुलसकर जल गए और मर गए, और इन 3 को उस आग के भट्ठे में डाल दिया गया। यहां पर हम एक बहुत विशेष बात देख रहे हैं कि ये 3 आग के भट्ठे में जलने के लिए तैयार हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं। वे नहीं चाहते कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करें। आज हम सबके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या हम ऐसा निर्णय ले सकते हैं अपने परमेश्वर के लिए जिसने मुझे और आपको बनाया है? मेरे प्रियो, यहां पर इन तीन युवकों ने अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और तब हम आगे देखने पाएंगे कि ये तीनों परमेश्वर के द्वारा बचाए जाते हैं। परंतु आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
जलाई ज्योति प्रेम की।